ومن آیاته ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، ولیذیقہم من رحمتہ، اور اس کی رحمت تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے. آپ دیکھیں پہلے بھی ہم نے اللہ کی آیات پڑھی تھی نا، اللہ کی نشانیاں، اس طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہواؤں کا چلانا بھی ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، یعنی جو بارشیں لے کر آتی ہیں، رحمت کی بارش لاتی ہیں تاکہ اللہ اپنی رحمت میں کا مزہ چکھائے. اس کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ بارش کے ذریعے بارش ہوتی ہے، زمین سے فصلیں لہلہاتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. بارش کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ تو واٹر ریزروائرز بھی، بارش آپ کو پتہ پڑتی ہے تو آپ کے یہ پانی کے ریزروائرز بھرتے ہیں، تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. والی تجری الفلک بھی امری ہی، اور تاکہ وہ چلائے تمہاری کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ ہوائیں کشتیوں کو آگے لے کر چلتی ہیں. وہ پتہ ہے جو جو بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں تو ہواؤں سے ہی چلتی ہیں. ایون وہ اگر کشتی کو اپوزٹ طرف لے کر جانا ہو پھر تو چپو چلاتے ہیں، لیکن اگر ہوا کی ڈائریکشن میں لے جانا ہو تو چپو رکھ کے پھر وہ اپنے سیلز جو ہیں وہ اوپر کر دیتے ہیں اور کشتیاں چلتی رہتی ہیں، ان کو بھی آرام مل جاتا ہے. والی تبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی سمندر میں تجارت کر سکو، اس کے لیے کشتیاں چلا دی ہیں، ہوائیں چلائیں اسے کشتیاں چلیں اور سمندر میں تم تجارت کر سکتے ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے ایروپلینز بھی اڑتے ہیں یہ بھی ہوا جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے. اگر ہوا نہیں ہے، بالکل ہوا ہی نہیں ہے تو یہ اڑ نہیں سکتے. وہ دیکھا نہیں اس کے پیچھے والا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے کہ مجھے اس کا نام اب بھول گیا، وہ اس طرح اس کی ڈائریکشن بھی گھماتے ہیں جو اس کے ونگز کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں اور پیچھے جو دم کے اوپر بھی، مجھے نام نہیں آ رہا. اینی ہاؤ تو یعنی جہازوں کے لیے بھی ضروری ہے ہوا. اور دیکھیں سبحان اللہ، ہوا ایسی چیز ہے نہ نظر آتی ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور اسٹل آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اور کتنے کام کر جاتی ہے آپ کے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، بس کرو گلے شکووں کو، بس کرو ناشکریوں کو، شکر ادا کرو. ہوا پہ بھی کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں، یہ بھی شکر ادا کرنے کی چیز ہے. ہم صرف ظاہر چیزوں کو یا ایسی چیزوں کو جو ہمیں کبھی ہم سے یعنی چھن جائیں ان کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں ہمیشہ سے ایک ملی ہوئی ہیں ان پہ شکر کا کبھی سوچتے ہی نہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہوا نہ ہو، ہوا ہے ہی نہیں ہے، بالکل ختم ہو گئی، اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا ہوا کو، تو پھر کیا ہو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ لائے ان کے پاس روشن دلائل، موجزے بھی دکھائے، ایسی ایسی نشانیاں بھی دکھائیں، بہت سارے رسول آئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے لیے یہ آیت ہے. فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر نہیں کئی لوگوں نے نہیں مانا تو انجام برا ہوا، انتقام لیا ہم نے کن سے؟ الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. اس کا مطلب جرم ہی ہوتا ہے جو انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے، جو اللہ کی پکڑ کا مستحق بنا دیتا ہے. انسان جب جرم کرتا ہے تو کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا نہیں ہے، اس وقت اس کو بڑی اس کی لذت مل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو بڑا مزہ آ رہا ہے جو بھی گناہ کرتا ہے، لیکن مزہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کی سزا ہوتی ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے. اسی طرح نیکی کا دیکھیں، نیکی کی مشقت ضرور ہوتی ہے. ایک تو آپ نے مثلاً اٹھ کے نماز ہی پڑھنی ہے، ایک تو مشقت ہے نا بھائی، اٹھیں گے، وضو کریں گے، کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے. آپ لیٹے پڑھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دل نہیں جا رہا اٹھنے کا، تھکے ہوئے ہیں، ایک مشقت تو ہے نا، تھوڑی سی تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، لیکن وہ کتنی دیر کی ہوگی؟ 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، گھنٹے کی بہت زیادہ ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا جو اجر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ جنت میں مجھے مل رہا ہے. وہ تو ایفرٹ بھی بھول جانی ہے آپ کو، ابھی تک آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج تک جتنے روزے رکھے ہیں، آج تک جتنی تہجدیں پڑھی ہیں، جتنے کبھی کوئی آپ کو یاد ہے کہ میں نے کتنی ایفرٹ کی، ابھی تک آپ کو اس کی محسوس ہو رہی ہے سختی، تھکاوٹ ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں نا، वो याद भी नहीं है हमने जो कर ली थी वो बस, लेकिन उसका अजर अल्लाह के हाँ जो लिखा गया वो तो वहीं कायम है ना, तो मुशक्कत उसकी खत्म हो जाती है लेकिन अजर बाकी रहता है। इसी तरह गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है जो भी गुनाह किए आज तक। अगर आपने जहन में लेकर आए, आप कहीं बेपर्दों के घूमते रहे, कहीं लोगों ने आपकी तारीफें की थी कि आप बड़ी हसीनाएं लग रही हैं, आप बड़ी ऐसे लग रही हैं, वो या और कोई गुनाह किया, बड़ा उस वक्त मजा आया, लेकिन उसके बाद आज क्या उसका मजा आ रहा है? उसका मजा खत्म हो गया, उसी वक्त चंद घंटों में खत्म हो गया था, और उसकी सजा बाकी रहती है जाई। तो अल्लाह ताला इंतकाम लेता है, उसका इंतकाम होता है, मगर किन से लेता है? जिन्होंने जुर्म किया, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करना जुर्म है, जिसको भी गुनाह लिखा जाता है ना वो जुर्म है। तो जैसे दुनिया में क्रिमिनल्स होते हैं ना, दुनिया के कवानीन को तोड़ने वाले, उनको मुजरिम कहते हैं ना, उनको जेलों में रखा जाता है, उनको सजाएं दी जाती, अस्तग़फिरुल्लाह, तो कई अल्लाह के भी मुजरिम होते हैं जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ कर देना, अल्लाह हमें माफ कर देना, हमने जो भी गुनाह किया उनके ऊपर हमें माफ कर देना, और हमारा अगर नाम मुजरिमों की लिस्ट में है तो अल्लाह ताला उससे निकाल देना। तो अल्लाह के भी कोई मुजरिम होते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको भी सजा देता है। दुनिया के तो मुजरिम बाज दफा पकड़े नहीं जाते, अल्लाह के मुजरिम ऐसे नहीं होते कि वो कभी भाग सके, वो जरूर पकड़े जाते। वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, और था हक हम पर मदद करना मोमिनों की। जितने रसूल आए जब उन्होंने निशानियां दी, लोगों ने नहीं मानी तो अल्लाह ने मदद की मोमिनों की, लेकिन यहां पे फरमाया अल्लाह ताला पे हक था, यानी अल्लाह के ऊपर एक फर्ज था, अल्लाह पर फर्ज है मोमिनों की नसर करना। ये फर्ज हम में से कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं ये कर सकता अल्लाह पे ये चीज हक है, फर्ज है, वो जरूर वो ये करे, ये मेरा हक है कि अल्लाह को देना चाहिए, ये उसके ऊपर फर्ज है कि वो ये ऐसा करके दिखा, ऐसे हम में से कोई नहीं कह सकता, ये खुद अल्लाह ताला ने अपने पर फर्ज किया है। याद रखें कि अल्लाह अपने ऊपर फर्ज कर ले कोई चीज, हक कर ले कोई चीज, वो उसके ऊपर है, लेकिन कोई इंसान नहीं कह सकता कि ये लाजिम है अल्लाह के ऊपर कि उसने करना है। तो अल्लाह ताला ने अपने पर लाजिम कर लिया, अपने पर फर्ज कर लिया मदद मोमिनों की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप चाहते हैं अगर कि मेरे लिए मदद आए अल्लाह की, तो उसके लिए शर्त क्या है? ये ईमान सच्चा होना चाहिए। ये ईमान अगर सच्चा होगा तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। हाँ, वक्त कब होता है, उसका मौका कब होता है, वो अल्लाह को पता है, मगर आएगी जरूर मदद। ठीक है, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, युरसिलु रियाह, जो भेजता है हवाओं को, फतुसीरु सहाबन, तो वो उठाती हैं बादलों को, देखा ना आपने कैसे बादलों को उठा के लेके जाती हैं, फयबसुतुहु फिस्समा, फिर फैला देती हैं उसको आसमान में। आप देखें कभी कभी सुभान अल्लाह ये बादल होते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कई फयशाउ, जैसे वो चाहता है। वाकई कई दफा इतने यानी साइंस की बुक वगैरह में आप देखेंगे तो बादलों की भी नाम है, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने साइंस में दिए हुए, कई बादल बारिश बरसाने वाले, कई बादल आप ऐसे ही देखते हैं सनी डे होता है और वाइट छोटी छोटी बदलियां घूम रही हैं, कोई कहीं खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है, कई फयशाउ, जैसे अल्लाह चाहता है। तो वो जो हवा है वो उनको ले लेके आगे चली जाती है, कभी जैसे भी तह बतह कर देती है, कभी आसमान पे ऐसे फैला देती है। ठीक है, वह अजाला हो कि सफन, और वो कर देता है उनको टुकड़ियों में, फतर अल वदका, फिर तुम देखते हो बारिश को, यखरुजु मिन खिलाली, फिर वो टुकड़ियों में उनको बादलों को कर देता है, बादल मिल जाते हैं साथ और बारिश होने लगती है, उनके बीच में से बारिश निकलने लगती है। फइजा सौब बिही मैशा, फिर जब वो पहुंचाता है इसको जिसे वो चाहता है, मैंने इबादी ही अपने बंदों में से, इजा हुम यस्तबशिरून, तब वो खुश हो जाते हैं। हमने एक हदीस भी पढ़ी हुई है ना कि वो आदमी सुनता है बादल से एक आवाज के फलां के खेत पे जाके बारिश बरसाओ, तो फिर वो चाहता है बादल के साथ साथ वो बादल चलता रहता है और उस जगह पे जाके बारिश बरसती है। ये भी अल्लाह के हुक्म से होती है कि फलानों के ऊपर जाके बारिश बरसाई जाए, फलां लोगों के ऊपर फलां जगह पे बारिश बरसे। तो ये फैसला कौन करता है? अल्लाह ताला। देखिए आप, इंसान इतना बेबस होता है कि अल्लाह अकबर, ये जो बारिश का सिस्टम है, ये जो बादल हैं, ये किसी शहर पे खड़े हो जाएं, सारे इंसान मिल जाएं, अपने जहाज उड़ा लो, अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, उस सिस्टम को वहां से हटा नहीं सकते आप। ये भाई आप कहीं और जाके बरस जाए, बस हमारे पास फ्लड आ गए हैं, हमारे नदी नाले ओवरफ्लो कर गए हैं, अब कहीं और चला जाए, बादल ही है ना, इतने नरम तो होते हैं, उनमें उनके बीच में से जहाज गुजर जाता है, इतने नरम है। हाँ, इतने बस, उनको कभी नीचे आए हो तो आप उनको हाथ से टच भी कर सकते, तो क्या मुश्किल है उनको हटा दे वहां से, उनको भारी तो नहीं है, नहीं हटा सकते। मनो टनों पानी ऊपर जाके खड़ा हुआ है बादलों के अंदर, जबकि वो बादल ऐसे रुई की तरह है, सुभान अल्लाह। यानी जब वो पानी नीचे आता है तो इंसान को अंदाजा होता है इतना पानी था आसमान पे खड़ा हुआ, आप गेंद को ऊपर उछाले तो वो जमीन पे आ जाती, मनोटनों पानी ऊपर खड़ा हुआ है आसमान पे, और आपकी जमीन ओवरफ्लो कर जाती है, वो आसमान पे खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। बादलों में इतना पानी मौजूद था, इतने टैंकर के टैंकर कौन से भर के ऊपर जा रहे हैं, जो के वहां पे पानी पहुंचा पहुंचा के आ रहे हैं, ना हम कोई पाइप देख रहे हैं जमीन से लगाया हुआ तो ऊपर जा रहा है, ना आसमान से कोई चीज आ रही है कि बादलों को सप्लाई मिल रही है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह जिसके ऊपर चाहता है, और चाहे तो कहीं खुशखुशहाली है, नहीं बरसता पानी। अल्लाहु अकबर। इज़ा हुम यस्तबशिरून, तब वो खुश हो जाते हैं जब उनके ऊपर अल्लाह की रहमत की बारिश आती है। और वाकई ऐसे होता है, देखें आप कभी, क्योंकि कोई किसान हो या आम लोग भी, कई फसलें हैं खुश्क हो रही हैं, बारिश कई दिनों से नहीं हुई, और एकदम बादल जमा होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, तो कितनी खुशी होती है। आम इंसानों को भी गर्मी बहुत सख्त पड़ रही हो, हमें तो यहाँ पे, चूंकि हम इतने ज्यादा आर्टिफिशियल अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट रखते हैं, सर्दियों में इंतहाई हीट लगा के रखते हैं, गर्मियों में इंतहाई एसी लगा के रखते हैं, तो हमें पता ही नहीं नेचुरल क्या चीज होती है। कभी वैसे नेचर से क्लोज होना चाहिए हमें, बहुत ज्यादा अपने आप को ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में न रखे, इतने नर्मो नाजुक ना बने कि हम कोई चीज जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमें पता ही नहीं नेचुरल मौसम क्या है, भाई एक आर्टिफिशियल ककून के अंदर बंद है सारे। तो जब वो हमारे मुल्कों में तो ऐसा होता था, कभी बिजली चली गई तो उसके बाद फिर बैठे हुए हैं, गर्मी इंतहा की है, एकदम बादलों की गरज सुनाई देती और फिर बादल आ गए, बारिश होती, तो जो वो शुक्र निकलता है और जो वो खुशी होती है, वो आप ये एसी में बैठ के बारिशों को वैसे शुक्र और खुशी कर ही नहीं सकते। तो वो खुश होते हैं जिस वक्त की बारिश आती है। वह इन कानों मेरे कबली अयू नजल आलही मेरे कबली लमुबलिसीन, और बेशक थे वो इससे पहले के उतारी जाए उन पर, इससे पहले अलबत्ता मायूस होने वाले, यानी इससे पहले वो यानी शोर था और ये था, हाय बारिश नहीं है, हाय गर्मी, हाय पसीना, हाय ये, यानी इससे पहले बिल्कुल मायूस हो रहे थे कि अब नहीं बारिश होनी अब तो, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो उतार दी बारिश, इससे पहले वो मायूस हो रहे थे, बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हुए थे बारिश से। इससे पता चलता है कि इंसान भी कितना थुड़ दिला है ना, बस जरा जरा सी बात के ऊपर बस खुश हो गया, उसके बाद फिर वो पहले मायूस हो रहा था, फिर उसके बाद बारिश आ गई तो बड़ा खुश हो गया। अल्लाह ताला इसी तरह ना उम्मीदी में उम्मीद की किरण दिखाता है, इसी तरह इंसान जब जिंदगी में हालात में भी मायूस होने लगता है तो अल्लाह ताला ऐसी एक यानी उम्मीद की किरण दिखाता है, फिर इंसान खुश हो जाता है और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फंदुर इला तारी रहमतिल्ला, देखो किस तरह अल्लाह ताला की रहमत के आसार हैं, कैफा यहयिल अर्द बाद मौतिहा, किस तरह वो जिंदा करता है जमीन को उसकी मौत के बाद, इन दालिका लमुहयिल मौता, इसी तरह बेशक वो अलबत्ता जिंदा करने वाला मुर्दों को भी, जैसे वो खुश जमीन को हरा भरा कर देता है ना, इसी तरह मौत के बाद भी जिंदगी दे देगा, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। वो तो देखे यहाँ पे हमें दिखा सकता है, बाज लोग कहते ना और जी किसने जी के देखा, किसको पता कौन से मुर्दे आए जिंदा होके जिन्होंने बताया हो, आज तक तो कोई जिंदा हुआ नहीं, आज भी लोग कहते हैं, तो फिर हमें क्या पता, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं आगे, तो अल्लाह दिखा सकता है मुर्दों को जिंदा करके, लेकिन ये उसकी सुन्नत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा दिखा देगा तो फिर तो वो कोई इम्तिहान ही नहीं रहेगा, गैब की सारी दुनिया लोगों के सामने वाजे हो जाएगी, इसलिए वो दिखाता नहीं है। मगर वो और चीजों के जरिए दिखाते, देखो मैंने जैसे जमीन को जिंदा कर दी ना, इस तरह इंसानों को भी कर दूंगा, वो भी कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। वहुआ आला कुल्ली शईन कदीर, याद रखिएगा कुल्ली शईन को, हर चीज पर कादिर है। जिसको शक हो कि मरने के बाद पता नहीं उठना है कि नहीं उठना, वो फिर इन निशानियों पे गौर कर दे, कभी अपनी इर्द गिर्द की जमीन को देख ले कैसे ये बिल्कुल डेड पड़ी भी थी और फिर कैसे यहाँ पे खेतियां लहलहाने लगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से, ये भी तो रहमतल्लाह है ना, इला आसारी रहमतल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की रहमत के आसार को देखो कैसे उससे जमीन वो जिंदा कर देता। तो वाकई कुरान भी अल्लाह की रहमत है, इसके आसार को देखें तो ये भी मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस कुरान की जो रहमत है इसके जरिए हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा कर दे और इस मुर्दा उम्मत को भी जिंदा कर दे या अल्लाह, ये उसकी रहमत के आसार हैं और ये उसकी रहमत होती है किसी के ऊपर, ये समझ ले, जब वो उसकी मुर्दा जिंदगी को ऐसे जिंदगी मुर्दा जिंदगी को ऐसे जिंदा कर देता, दिल को जिंदा कर देता। वाला इन अरसलना रीहन, और अलबत्ता अगर भेजे हम हवा को, फराओहु मुसफरन, तो फिर वो देखे जर्द, फज़ल्लु मिन बादही यकफुरून, अलबत्ता हो जाए इसके बाद कुफर करते, यानी अगर उसके बाद, अय अल्लाह इंसान तो कैसा है देखें, अगर फिर अब बारिश आ गई ना, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हाँ फिर कोई हम री भेज दें, री होती है जो यानी अजाब की हवा, री अभी तक तो जो हवाएं थी वो रियाह थी, मतलब रहमत की हवाएं, तो जो री है वो अजाब की हवा है। फिर वो इसको देखते हैं कि इससे जर्द हो गए खेत, जर्द हो गया सब्जा, जल गया, चीजें तबाह हो गई, मसलन ऐसी हवाएं आई, हवाओं से भी तो देखे ना चीजें उड़ जाती हैं, छतें उड़ जाती हैं, तबाही आती है। लदल्लू में बाद ही यकफुरून, अलबत्ता हो जाते हैं इसके बाद कुफर करते हुए, यानी फौरन ना शुक्रिया शुरू कर देते हैं, फौरन शिकवे शिकायतें, यानी बस इतनी सी देर के लिए तुम शुक्र गुजार हुए कि बस जितनी देर तो मिल रहा है तो बड़ी ही शुक्र गुजारी है, बड़े अच्छे मूड है, बड़ा अच्छा सारा चल रहा है, जो ही जरा सा कुछ मसला हुआ, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ हो गया तो फौरन ही नाशुक्रिया शुरू कर दे। अल्लाह अकबर, यानी ऐसे थे कि वो पहला जो इनाम था वो भी भूल गए कि पहले मैं कितनी नियमतों में रह ही रही थी ना, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया है तो फिर भी मैं उसकी शुक्र गुजारी ना छोड़ू, आज तक तो अच्छा ही रह रही थी ना, अगर थोड़ी देर के लिए कोई टर्मोइल आ गया जिंदगी में तो इसका मतलब ना शुक्रिया शुरू कर दू, शिकवे गिले शुरू कर दू। और वाकई ऐसा होता है जब लंबे अरसे तक इंसान बड़ी नेमतों में रह रहा है, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग फ्लरिश कर रही है, कारोबार चमक रहा है जी, घर भी बड़ा अच्छा मिल गया, गाड़ी है, बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, सब यानी जॉब है तो वो भी बड़ी जबरदस्त चल रही है, एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, वो बड़े खुश है। फिर अल्लाह की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाती है, कहीं अल्लाह जरा सी डोर खींच देता, कोई तूफान आ गया, घर तबाह हो गया, जॉब चली गई, या कोई और बच्चों की तरफ से कोई ऐसा मसला देखने में आ गया, किसी बच्चे का घर यानी बच्ची अपने घर के अंदर तंग होने लगी है, वहां पे कोई मसले हो गए हैं या और कोई परेशानी देख ली बच्चों ने, तो वो जो पहले अल्लाह ने नेमते नहीं थी ना वो भी सारा को भूल जाते, जो कभी अच्छे दिन देखे थे वो तो याद ही नहीं रहते कि कभी अच्छे भी आए थे, बस कहते हैं हाँ हमें तो मिला ही क्या है, हमारे साथ तो कोई हुआ ही अच्छा क्या है, हमें तो आज तक कोई अच्छी चीज ही नहीं मिली, हमने तो दुख ही देखे हैं, हमें तो कोई ऐसे करने लगते। खुद सोचें, आप अपने आप को रखें यहाँ पे, आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा होके वो आपके सामने खड़ा होके कहे आपने हमारे लिए किया ही किया है, आपने क्या किया ऐसा हमारे लिए, क्या गुजरेगी आपके ऊपर फिर, सिवाय आंखों में आंसू के और कुछ नहीं होगा कि हाँ बेटा हमने तुम्हारे लिए किया ही किया है। तो आप यहां पे देखें, माँ बाप तो क्या बच्चों के लिए करते होंगे जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए किए, चाहे वो काफिर हो मोमिन हो, सब के लिए करता है। फिर एक दिन बंदा उठ के कहने लग जाता है, हाय हमें तो मिला ही क्या है, हाय ये हमारे साथ क्या हो गया, हाय हमने क्या ऐसा कर दिया कि ये हुआ। अल्लाह अकबर, आज तक जो तुम्हारे पर इतनी नेमतें हुई, कभी तुमने उनका भी एहसास किया? इतना थोड़ दिला है, फौरन ही पलट जाता है। जब तक अपनी मर्जी का सब कुछ मिल रहा हो ना, तब तक बड़ा खुश है, जरा सा भी कुछ कहीं मसला आ जाए फिर ना शुक्रिया देखो। فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ। असल में ये जो है ना, काफरों के तरीके थे, लेकिन मुसलमानों के भी आज यही तरीके हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक है नबी आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ, और ना ही आप सुना सकते बहरों को, इदा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो मुंह मोड़ के पीठ फेरे होते, ना तो आप मुर्दों को सुना सकते हैं। इससे क्या पता चला, काफिर की वैसे तो मिसाल दी जा रही है कि वो जिसका दिल मुर्दा हो चुका है ना, उसको आप नहीं सुना सकते, जैसे मुर्दे नहीं सुन सकते जो कब्रों में है, इसी तरह काफरों के भी दिल मुर्दा है, उनको भी आप जितना मर्जी समझाएं उनको नहीं समझ आती। एक यहां पे बात क्या पता चली कि जो किसके साथ तशबीह दी जा रही है, मुर्दे के साथ, मुर्दों को नहीं आप सुनवा सकते, यानी मुर्दे सुन नहीं सकते, काफिर को मुर्दे से तशबीह दी जा रही है। इसका मतलब क्या बना, मुर्दा नहीं सुन सकता, इसीलिए तो तशबीह दी जा रही है। मसलन मैं आपको कहूं कि ये दूध की तरह सफेद है, इसका मतलब क्या है, दूध क्या काला होगा? ये चीज तो सफेद है ही, लेकिन इसका मतलब दूध भी सफेद है और ये चीज भी सफेद है। यहां पे काफिर के दिल की बात हो रही है, लेकिन उसको किससे साथ मिसाल दी जा रही है, मुर्दे के साथ जो सुन नहीं सकता, इसी तरह ये काफिर सुन नहीं सकता। ये इसका मतलब नहीं है कि जी यहां पे तो काफरों की बात हो रही है, आप मुर्दों की बात तो ना करें, बेशक काफरों की बात हो रही है, लेकिन मिसाल किससे दी जा रही है, मुर्दे से। इसके बावजूद हमारे मुसलमानों में कई लोग ये अकीदा रखते हैं, जहां हम किसी कब्र पे जाएंगे तो वो मुर्दा सुनता है हमारी बातें, नहीं सुनता। हाँ, जो हदीस के अंदर आया है, आप उनको सलाम करें, अल्लाह ताला उन तक ये सलाम पहुंचा देगा। या दूसरी चीज आई है कि आप मुर्दे को दफना के जब कब्र से वापस लौटते हैं तो हदीस में आया वो कदमों की चाप सुनता है, मगर कोई हदीस ऐसी सुना दे मुझे, बता दे मुझे, जहां पे ये लिखा हो कि आप जब मुर्दों के साथ बातें करेंगे, कब्रों पे जाएंगे, उनको कहेंगे तू कहाँ चला गया, तू हमें छोड़ के किधर चला गया, तू इधर, वो सारी बातें आपकी सुन रहा है और वो सारी बातें महसूस कर रहा है, और सारा जो उससे कहेंगे जी आप हमें ये दे दें, बच्चा दे दें, रिस्क दे दें, फलां दे दें, वो भी सुन रहा है। वो सुन भी नहीं रहा, पूरी करनी तो बात की बात, वो बेचारे ने क्या पूरी करनी है, वो तुम जरा दुनिया से चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया से चला जाता है वो तुम्हारी दुआओं का ऐसे मोहताज होता है, जैसे कि डूबने वाला जो होता है वो पुकारता है ना हेल्प के लिए, इस तरह वो तुम्हारी दुआओं का मोहताज होता है। ये हदीस है, हा? वो जिंदों की दुआओं के मोहताज होते हैं, जिंदे बेचारे जाके उनसे दुआ कर रहे थे, कैसी बेवकूफी की बात है। तो वो अब इसीलिए हमें दुआएं सिखाई गई है ना, कि जो मैयत है उसकी ये दुआएं उसके लिए मांगो बख्शिश की। अगर वो दूसरों के लिए कुछ कर सकते होते तो उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगने की क्या जरूरत थी। तो मुर्दा जो होता है वो नहीं सुन सकता। हाँ, बदर के वक्त देखे ना, काफिर जो थे वो कुएं के अंदर उनकी लाशें पड़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को खिताब किया था, तो उस वक्त आले बिन हज़रत उमर थे या इब्ने उमर थे जिन्होंने फरमाया था या रसूलल्लाह ये आपकी बात सुन सकते हैं, तो आपने फरमाया था हाँ ये तुमसे ज्यादा मेरी बात सुनते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त सुनवाया था उनको, यानी इससे पता चलता है सहाबा का अकीदा यही था कि मुर्दे नहीं सुन सकते, और वरना वो क्या उनको कहने की क्या जरूरत थी कि ये कैसे सुनेंगे, ये तो मुर्दा है, वरना ये बात उनको कहने की क्या जरूरत थी, उनको तो पता ही होता वो खुद भी जाके कब्रों पर इसी तरह बातें कर रहे होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर रहे हैं, तो कोई नई बात तो ना होती उनके लिए, मगर उन्होंने सवाल पूछा ये क्या सुन सकते हैं आपकी बात को, तो अल्लाह ताला ने सुनवाया उस वक्त उनको, वरना सुन नहीं सकते थे। तो इस अकीदे को पहले तो दुरुस्त करें, ये जहां हम मिजारों पे जाके कब्रों पे जाके उनसे कोई बात करते हैं वो नहीं सुन सकते, तो जो काफिर है आप उसको नहीं सुनवा सकते कि वो मुर्दों की तरह है, वला तुस्मिउ सुम्मा, और ना आप सुनवा सकते हैं बहरों को पुकार, जो बंदा डेफ हो चुका है। और इजा वल्लो मुदबिरीन, ऊपर से चलो आप डेफ होता था तो आप उसको इशारे से ही कुछ बता सकते, लेकिन अगर वो पीठ मोड़ के भी खड़ा हो जाए तो अब आप इशारे भी नहीं उसको कर सकते, तो ऐसे बंदे को क्या सुनवाएंगे। यानी ये बिल्कुल होपलेस केस हो चुके। वमा अंता बिहादिल उम्मी, और ना ही आप रहनुमाई कर सकते अंधों की, अंदर ला लाती है उनकी गुमराही से। एक बंदा अंधा है और वो आप उसको बात समझा रहे हैं, वो सुनने को ही नहीं तैयार है, तो आप उसको कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। वो अंधा है, अब आप उसको कह रहे हैं भाई सीधा जाओ राइट मुड़ो, वो आपकी बात ही नहीं सुनता, आप उसको कैसे रास्ता दिखाएंगे। इन तुस्मियों, फिर बताया कि किसको आप सुनवा सकते हैं। सुनवाने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये मतलब नहीं है कि वो उनकी ये जो कानों की जो हियरिंग पावर है वो खत्म हो गई है, ये नहीं मतलब। सुनती तो गाय भी है, सुनती तो बिल्ली भी है। हाँ, बात यह कि सुन के उसको दिल में उतारना। आप फिर किसको सुनवा सकते हैं, यानी किसके दिल में बात उतरेगी। इन तुस्मियों, नहीं आप सुनवा सकते, इल्ला मगर, यानी सिर्फ और सिर्फ ये है जो कि आपकी बात को सुन के समझ लेगा और दिल में उतारेगा और उसके मुताबिक अमल करेगा। मैं यू अमीनू भी आयाती ना फहम मुस्लिमून, जो ईमान रखता है हमारी आयात पर और वो मुसलमान है, वो सरे तस्लीम खम कर दे, वो झुक जाए, उसको झुकना आता हो, उसके अंदर तकबर ना हो कि हमें तो खुद ही सब कुछ पता है, हमने क्या कुरान से सीखना है, हमने क्या मानना। नहीं, आप उसी को सुनवा सकते जिसका दिल झुका हो और जो ईमान रखता हो इन आयात पे। अरे आप देख लें, आप दुनिया में लोगों को सुनवा के देख लें, बाज लोग तो सुनना ही नहीं चाहते, और बाज जिनको कानों से तो सुन गया है, समझ भी आ गई है, ये नहीं कि समझ नहीं आती, वो उसके बाद आगे से क्या कहते हैं, तो अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि तो उनके पास हर चीज का जवाब है, झुकना नहीं चाहते, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जैसे ये कोई ऐसे ही किसी इंसान की बातें। जिसका दिल झुका होगा ना, जो वाकई चाहता है, जो समझता है ये अल्लाह का कलाम है, ये मैं किसकी बात पढ़ रहा हूं, ये कोई इंसान की बातें नहीं है, ये अल्लाह की बात है, उसका फिर दिल वाकई झुक जाता है, वो कहता है क्या बात कही जा रही, मैं समझूं और इसके मुताबिक चलूं। सिर्फ वो लोग हैं जिनको आप सुनवा सकते हैं, बाकी आप लेक्चर देते रहे, लोग बैठे भी रहेंगे, ऐसे लगेगा सुन रहे हैं, नहीं, उनके सर के ऊपर से गुजरती जाएगी, उनके अंदर अपना ही इतना जूम है कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने PhDs हैं, हमें कौन बताएगा, हमें खुद ही इतनी अकल है, कुरान हमें क्या सिखाएगा। वो बेपैसे करने लगते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी एक और कुदरत दिखाई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुमको, किस स्टेट में थे तुम, मिन ज़ौफ़िन, ज़ौफ़ से, कमजोरी से। अगर आप अपनी ओरिजिन को सोचें तो मेरा और आपका ओरिजिन क्या था, इब्तदा क्या थी, कि हम ऐसी स्टेट में थे, ऐसी हालत में थे दुनिया में आने से भी पहले, जो एक गंदगी की स्टेट समझी जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया जरा देखो अपने आप को कि तुम कैसे थे, कि अगर वो गंदगी कपड़े पे लग जाए तो इंसान धो के उसको पाक करता है, और वो गंदगी कहीं फ्लश में, टॉयलेट में या सिंक में बह के चली जाती है, नालियों में। ये वो चीज है जिससे हम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा थूक का दिखाया था, थूक की तरफ इशारा करके फरमाया इंसान इस जैसी चीज से बना। उसके बाद क्या थे, वो जो बोटी है, कभी गोश्त को धोते हुए एक बोटी के ऊपर गौर करें कि ये मैं थी। फिर उसके बाद किस किस शक्ल में पलती बढ़ती गई, और जब दुनिया में भी आई तो सुभान अल्लाह, इतना कमजोर इंसान है, इतना कमजोर है कि ना तो उठ सकता है ना बैठ सकता है, और कमजोरी इतनी ज्यादा है कि अपनी कोई जरूरत बता नहीं सकता, बस रो रहा है बच्चा, उसको कोई तकलीफ है वो नहीं बता सकता, कोई कोई अच्छा, इतना कमजोरी की इंतहा तो देखें कि अगर कोई जरा सा बाजू जोर से खींच ले बाजू ही उतर आता, इतना कमजोर है। यानी और कभी कभी तरस आता है छोटे बच्चों के ऊपर, इतना रो रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही थी इनकी वजह क्या रोने की। कभी माँ उल्टा लुटाती, कभी सीधा करती है, कभी डायपर चेक करती है, कभी फीडर मुंह में डालती, ये नहीं समझ आ रही थी बच्चे का क्या क्या पेट में दर्द है। कोई खुद ही अंदाजे लगाते रहते हैं, अच्छा लगता है ऐसे हो गई, लगता है गैस हो गई होगी, लगता है फलां हो गया होगा, मुझे तो लगता है कि आज इसकी नींद नहीं पूरी, नींद आई होगी, लगता है भूख लग। लेकिन कितनी गैसिंग गेम होती है, बच्चा इतना भी नहीं बता सकता कि ओहो मेरा तो ये मसला है कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, इतना भी नहीं बता सकता। उल्टा लिटा दो रोता रहेगा, सीधा ही नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, इतना कमजोर। भूख लगती है, साथ फीडर पड़ा हुआ है, मुंह में नहीं डाल सकता फीडर, मैं उठा के मुंह में डालू, करीब बोतल पड़ी हुई है। अल्लाह ताला दिखाता है तुम इतने कमजोर थे, इतने कमजोर। फिर उसके बाद अल्लाह ने सिखाया ना, दूध पीना भी अल्लाह ने सिखाया, रो के दिखाना भी अल्लाह ने सिखाया। वो किसने सिखाया था उसको? क्या वो पहले से ट्रेनिंग लेता आया था पेट में कि ऐसे ऐसे सक करना है या रो रो के ऐसे दिखाना है? तुम अपनी उस कमजोरी को याद रखना कि तुम ऐसे कमजोर थे, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, सुम्मा जाला मिन बादी दोफिन कुव्वतन, फिर उस जोफ के बाद उसने तुमको कुव्वत दी। कुछ इंसान बड़ा होने लगता है, अच्छा फिर फौरन भी नहीं बड़ा हो जाता, यानी आप देखें कि साल डेढ़ साल बाद ही इंसान का बच्चा चलने लगता है, चलने भी लगता है तो तब भी इतने इतने स्टेप्स लेता है और फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर भी तेज भाग दौड़ नहीं सकता, फिर और फिर इतना वल्नरेबल होता है कि कहीं भी खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको आप अकेला ही नहीं छोड़ सकते किसी वक्त भी। फिर थोड़ा सा और होश संभालने लगता है, बातें करने लगता है, हंसने बोलने लगता है, फिर और कुव्वत आती है, फिर और कुव्वत आती है, फिर थोड़ी और कुव्वत आती है, फिर हर आने वाला दिन जो होता है ना, कुव्वत बढ़ती ही जाती है। और जब इंसान पूरी मैच्योरिटी को पहुंचता है तो उसको लगता है ही नहीं कभी मैं कमजोर भी था। फिर वो उठा उठा के चीजें पटकता है, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करता है, जमीन पे पैर मार मार के चलता है, उसके नाजो अंदाज ही खत्म नहीं होते, वो ऐसे करता है जैसे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, अपनी बड़ाई का जोम इतना सर पे सवार हो जाता है कि अल्लाह कोई बातें करने लगता है। देखिए अल्लाह ताला फिर दिखाता है कि देखो इब्तदा तुम्हारी कमजोर, फिर थोड़े दिन के लिए तुम जरा कुव्वत पकड़ते हो, मतलब ऐसे जवान और ताकतवर हो जाते हो, और उसके बाद सुम्मा जाला मिन बादी कुव्वतिन दौफम व शैबा, फिर बनाया तुमको इसके बाद कमजोरी की हालत में, कुव्वत के बाद कमजोरी को बनाया और बुढ़ापा बना दिया। उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा कर देता है कि फिर जैसे सर्कल एक जगह से शुरू करते हैं वापस वहीं आके खत्म हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। वो किसी ने बड़ी अच्छी पिक्चर एक दफा भेजी थी, छोटा सा बच्चा दिखाया, वो ऐसे बड़ा होता होता गया, पूरा आदमी बन गया, फिर उसके बाद पिक्चर में ही फिर वो आदमी की कमर झुकने लगती है, झुकता 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 जाता है और फिर वो बिल्कुल फिर वैसे ही हो जाता है, बेड रिडन जैसे कि एक छोटा बच्चा। फिर उसकी वही वैसी कमजोरी जैसे पहले थी, फिर हर दिन कमजोरी की तरफ जा रहा होता है बजाय कुव्वत के, हर दिन नीचे को जाता है। जैसे आप हिल के ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ी पे चढ़ते, एक दिन होता है जो चढ़ाई का होता है, आप फिर पीक पे चले जाते, फिर उसके बाद कोई और चारा नहीं है सिवाय ये कि आप नीचे ही उतरेंगे, अब ऊपर जाने का और कोई रास्ता नहीं। अब आप पीक पे पहुंच गए ना, उसके बाद नीचे ही नीचे का सफर होगा, कभी ऊपर का नहीं सफर होता, फिर नीचे की तरफ आना होता है। और हम में से अक्सरियत जो अभी 35 से ऊपर हो गए, वो सब नीचे की तरफ है अब सफर। कईयों के असर के बाद का वक्त है और कईयों का मगरिब के बाद का वक्त है, ये दिन खत्म हो जाना जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी एक दिन की तरह ही है और वो दिन एंड हो जाना ईशा के ऊपर, मगरिब के ऊपर ये सूरज डूब गया बस, फिर मुकम्मल अंधेरा। तो एक दिन फिर वो भी आ जाता है कि ये जो बुढ़ापा आता है ना, قوت کے بعد جو کمزوری آتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے. تو گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں, وہی کمر جو پہلے اکڑ کے کھڑی ہوتی تھی اب درد کرنے لگتی ہے, بینائی جانے لگتی ہے, بال سفید ہونے لگتے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں, اور چہرہ جھریوں سے پھر آہستہ آہستہ اتنا بھرنے لگتا ہے. کچھ کر لیں ریورس نہیں ہوتا, طاقت کی جگہ کمزوری آنے لگتی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی بڑا کہے یا ہمیں کوئی آنٹی کہے یا ہمیں برا لگتا ہے, وہ تو یہ تو انجام ہے ہی انسان کا, کتنے دن تک اسے بھاگو گے. آپ دیکھیں کہ پھر انسان جو پہلے وہ طاقت کا ایک علامت تھی, اب کمزوری کمزوری ہے. اور پھر اس کے بعد وہی انسان جو کہا کرتا تھا نا مجھ جیسا ہو تو کوئی سامنے آئے, وہ انسان خود عبرت کی تصویر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کسی ایک گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, سانس کے سلنڈر لگا ہوا ہے, یا کھانے کی نالی لگی ہوئی ہے, یا ان کی کمر جھکی ہوئی ہے, یا لاٹھی ٹیک ٹیک کے سہارا لے کے چلتے ہیں, یا سر مسلسل ہلتا رہتا ہے, کوئی چیز بھی پکڑنے لگتے ہیں تو ہاتھ کپ کپ آنے لگتے ہیں, کسی کے گھر میں ہے یا کہیں کسی کے گھر میں اور میں دیکھا ہوا ہے, ضرور سوچا کریں کہ ایک دن یہ بھی میری طرح تھے, ہمیشہ ایسے نہیں تھے, پھر کس نے ان کو زور آور سے بے زور کر دیا, یا ان کی گھن گرج سے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے, بچے سہم جایا کرتے تھے ایک ڈانٹ سے, آج وہ خود سہمے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا سی تیز آواز کہیں سے سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, نیند میں ڈر جاتے ہیں, آج وہ بالکل بچے بن گئے ہیں, بات بات پہ ضد کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, رونے لگتے ہیں, راتوں کو چیخ مار کے اٹھ جاتے ہیں. ضرور اسے عبرت لیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے, کوئی اولڈ ہوم میں چلے جائیں, ریہیب سینٹر میں چلے جائیں, جہاں پہ ایسے ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جو صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ موت بھی انسان اپنے آپ کو خود نہیں دے سکتا. آپ انسان نہیں دیکھ کے سوچتے ہیں اے اللہ اس کا اب دنیا میں کیا کام ہے, یہ کیا فائدہ اس کا, اب اس کو تو اب موت ہی آ جائے تو اچھا ہے, لیکن وہ مر بھی نہیں سکتے, وہ کسی کی ضرورت نہیں رہے, دنیا نے اٹھا کے ان کو ایک جگہ پہ پھینک دیا جہاں پہ وہ بس گھڑیاں گن رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, موت نہیں آتی. جائیں جا کے دیکھیں, پھر سوچیں اگر مجھے موت نے نہ آ دبوچا تو میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے, اگر مجھے موت نہ آئی. ساری پھر انسان کی یہ بڑ بڑ بند ہو جاتی ہے, یہ زبانیں چلانا بند ہو جاتا ہے, ساری یہ بڑائیاں خاک میں مل جاتی ہیں. کسی بہت بوڑھی عورت کی طرف پھر غور سے دیکھ کر سوچئے گا کہ یہ میں ہوں اگلے 40-50-60 سالوں میں, یا قبر کی کوٹھڑی ہے. تب دیکھیے گا کہ زندگی کی جو یہ وقت ہے اس کی کتنی قدر آتی ہے, اور کتنا انسان کا جی چاہتا ہے کہ جلدی کچھ کر جاؤں. کیا اس کے بعد بولنے کے لیے ہمارے پاس کچھ رہ جاتا ہے؟ اور دیکھیں انسان اس میں اتنا بے بس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, وہ مالک ہے, وہ جیسا چاہے کرتے. آپ دیکھیں انسان کا اتنا سا بھی زور نہیں ہے کہ وہ کلاکس کو روک دے, سوئیوں کو چلنے سے روک دے, وقت کو روک دے, تھام لے یہ دن نہ گزرے اور وہ جوانی میں ہی رہے. کتنے لوگ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری کاسمیٹک انڈسٹری, یہ سب, یہ جو کیا نام ہے, یہ جو پلاسٹک سرجریاں ہیں اور یہ سب چیزیں, یہ کاروبار کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے چل رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے یعنی پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح جوان رہ جائیں. چہروں کے اوپر کیا کیا وہ اپنی جوانی کے لیے رنکلز ختم کرنے کے لیے، پھر اپنی جوانی کے لیے انسان اپنے اوپر میک اپ کرتے ہیں، پھر اپنے حسن کو قائم رکھنے کے لیے کس کس طرح کے انجیکشن لگواتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. مگر اس کے بعد بھی کیا ہے، پھر انسان مرجھا ہی جاتا ہے، یہی اس کا انجام ہے. چہرے کو ایک کچھ کر بھی لیتا تو پھر باقی جسم ڈھل تو رہا ہے، آزاد تو جا رہے ہیں، دھلکنے لگتا ہے وہ، اس کی کمر جھکنے ہی لگتی ہے، کتنا بھی چھپا لے نہیں چھپا سکتا. اب بتاؤ کس میں طاقت ہے، کس دنیا کی پاور میں، کس دنیا کو سپر پاور کہتے ہو تم، بتاؤ کس میں طاقت ہے اس کو روک سکے. بالکل بے بس ہو تم، بالکل بے زور ہو تم. اللہ اکبر. جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو وہ کوئی ایک چیز کی کمی دے دیتا ہے، کسی کو کوئی وہ ایک چیز زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو ذہنی کمزوری دے دی ہے، کسی کے اعضاء میں سے کوئی کام نہیں کرتا اسے، جیسا چاہے پیدا کر دے. اللہ چاہتا تھا تم اندھے پیدا ہوتے دنیا میں، بہرے پیدا ہوتے دنیا میں، تمہارا دماغ ہی نہ کام کرتا. بعض بچے پڑھے ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ بھی معذور ہیں اور جسمانی طور پہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بستروں پہ پڑے ہوئے اٹھ ہی نہیں سکتے. جیسا چاہے وہ پیدا کہ وہ العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا. اس کے بعد بتائے ہیں کہ اللہ سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں، واپس تو اس کے پاس ہی جانا ہے. تمہارا تو جسم بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی سنتا. انسان کو بتایا جا رہا ہے کمزوری، طاقت، پھر کمزوری، ٹھیک ہے نا، کمزوری، طاقت، کمزوری. کمزوری کتنی دفعہ؟ دو دفعہ. اور طاقت چند دن کی ایک دفعہ آتی ہے بس زندگی میں. اس کے بعد انسان کتنی بھی کوشش کرے وہ کمزور ہی، ہر آنے والا دن اس کو کمزور ہی کرتا ہے، طاقتور نہیں کرتا. وہی فوڈ کھا رہا ہے، وہی سب کچھ کھا رہا ہے، طاقت نہیں آتی. اب کمزوری میں بڑھے گا، طاقت میں نہیں بڑھ سکتا. ایک دن طاقت میں بڑھ رہا تھا، وہ جو دو دفعہ ہوا اس کو تم کیسے بھول سکتے ہو؟ طاقت تو صرف ایک دفعہ تمہیں ملی ہے، کمزوری تمہیں دو دفعہ ملی. تو اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری کو کبھی نہ بھولنا، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا اس کمزوری کے ڈفرنٹ سٹیجز کو جس سے گزر کے تم جوانی تک پہنچے ہو، اور یاد رکھنا اس کمزوری کو جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اوپر ہی دیکھ کے، کوئی کتابیں چھوڑو پڑھنا، کوئی اور ریسرچ چھوڑو، خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس تحریر کو ہی پڑھ لو، تو تمہیں یقین آ جائے گا. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جیسا چاہے تمہیں کر دے، کوئی تمہارا بس نہیں ہے. اب کوئی چاہے نہیں نہیں جی مجھے بڑھاپے سے بڑی نفرت ہے، میں تو بوڑھی ہونا ہی نہیں چاہتی، تو کیا کر لو گے پھر، کیا کر لو گے؟ نہ اپنے آپ کو موت دے سکتے ہو، نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکتے ہو، کیا کرو گے پھر تم؟ اللہ اکبر. ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم. یہ جو دنیا میں فارغ گھومتے رہے نا اور ادھر ہی غفلت میں زندگی گزار کے آ گئے اور اپنی منمانیاں کرتے رہے، مجرم تھے نا یہ، اللہ کے مجرم ہیں. جو دنیا میں تو بڑے سٹیٹس والے تھے اور بڑی عزتوں کے ساتھ گھومتے تھے، وہاں پہ جیل میں سے نہیں آئے، یہ اللہ کے مجرم ہیں. وہ مجرم کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، قسم سے، ہم سے قسم لے لیں، ہم ایک پل کے سوا تو رہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ اکبر. یعنی زندگی یہ ساری 70-80-90 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی بھی ایسے لگے گی جیسے ایک ساعت رہے ہیں، بس ایک گھڑی، ایک دن بھی نہیں، ایک گھڑی. اللہ اکبر. آج بھی اگر آپ غور کریں، آپ جتنے بھی سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، آپ पिछली जिंदगी के इन 50 सालों को आंखें बंद करके सोचें, ऐसे नहीं लगता कि पल भर में गुजर गए। कल तक तो मैं नन्ही सी बच्ची थी, भागती फिरती थी फ्रॉक पहन के, कल तक तो मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं 50 साल की भी हो गई। और जो इससे ज्यादा बड़े हैं वो उतनी अपनी उम्र का देखे। अगर आप एक 50 साल अच्छी उम्र होती है, अगर आप ये कहें कि आप अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएं, तो चंद घंटे में सारी कहानी उनकी ओवर हो जाएगी। चंद बातों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह जब इंसान कब्र में भी रह के और ये जिंदगी भी गुजार के जब हशर में खड़ा होगा, तो ये पूरा टाइम पीरियड दुनिया की जिंदगी का और हशर वो जो कब्र का था, बरजख का, वो सब इतना कलील लगेगा और दुनिया की जिंदगी बस एक साथ से ज्यादा नहीं लगेगी। आज जिसको हम सोचते ना, पता नहीं कब आएगी क्यामत, हमें क्या पता, पता नहीं कब, अभी तो आई नहीं है, पता नहीं कितने सालों में आएगी। हाँ जी, आज लगता बहुत दूर है, बहुत वक्त है पड़ा हुआ, भी वहां जाके पता चलेगा ये तो बहुत ही थोड़ा था जिसको हमने इतना ज्यादा समझ लिया था, वो तो बहुत कलील था। जी ये बताइए, कुरान करीम में ये कई जगह यही बात आई है कि लोग जाके वहां पे कहेंगे, हाय हम तो एक साथ साथ रहे, दिन का कुछ हिस्सा रहे, हम तो एक दिन रहे, पूछ ले आप इन हिसाब लगाने वालों से जिनके हाथ से बड़े तेज हैं, जिन जो बड़े मैथमेटिशियन हैं, बड़े हिसाब किताब में माहिर हैं, इनसे पूछ लेना, वाकई हम इतना ही रहे, हम नहीं रहे इससे ज्यादा। ये बातें हमें यहाँ पे इस वक्त बताने की क्या जरूरत है, बताए। देखिए इसकी जरूरत यह है कि जिसको ये पता चल गया कि मेरी ये जिंदगी एक साथ से ज्यादा नहीं है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट है लाइफ पे? बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हमें पता चल जाए ना, कलील वक्त रह गया, आप खुद बताएं, जिसको पता चल जाए कलील वक्त रह गया, कोई किसी को डॉक्टर कह दे जी आपके पास बस 4 महीने 6 महीने, बस इसके बाद नहीं, और जो यकीन हो कि मेरा बस कलील वक्त रह गया, वो जाया करेगा उसको? कभी भी नहीं करेगा। जिसके पास, जिसको ये पता चल जाए कि मेरे दिन कम हैं, वो तो यानी स्पीड से ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो तो कहेगा कि मैं सोऊं भी ना और कुछ भी ना करूं, मैं तो बस अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लूं। ठीक है ना, इसकी मिसाल ऐसे समझे जिसके पास एक छागल पानी की हो, एक लेदर बैग हो पानी का, और सहरा में है वो, इर्द गिर्द कहीं पानी नहीं है, वो क्या उस पानी से अपने पैर धोएगा? नहीं, वो तो संभाल संभाल के रखेगा, वो जाया नहीं करेगा उस पानी को। इसी तरह जिस इंसान को ये पता चल जाए ये मेरी जिंदगी और बड़ी कलील है, एक ही जिंदगी और ये कलील है, वो कभी इसको जाया नहीं कर सकता। फिर उसको वक्त बड़ा वो प्लानिंग के साथ गुजारेगा, फिर उसको पछतावे होंगे उस वक्त के भी कि जो पहले उसने बेकार में गुजारे, फिर वो इसका कोई दिन कोई लम्हा ऐसे नहीं जाने देगा कि मैं ऐसे ही बस बेपरवाही से गुजार दूं, मेरे पास तो बड़े दिन पड़े हुए हैं ना। नहीं, हर दिन उसको कीमती है, क्योंकि ये तो है ही बहुत मुख्तसर। तो ये जिंदगी जो हमारी गुजर चुकी है, ये लम्हा भर की कहानी लगेगी, इतनी ये मुख्तसर है, और जो आने वाली है ये भी बड़ी मुख्तसर है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह की फरमाबरदारी कोई बहुत लंबे अरसे को नहीं आपको करने को कहा गया, कि हजारों साल हमने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है तो कर करके हम थक जाएंगे। नहीं, कितनी कलील मुद्दत के लिए करनी है ना, उससे फिर कितनी हमेशा की जन्नत मिल जाएगी। इतनी छोटी सी ये जिंदगी है, बस इतनी सी जिंदगी में ही तो अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह अकबर, आज चाहे ये मुख्तसर ना भी लगे ना, आखरत में जाके बहुत मुख्तसर लगेगी। कदाली का कानू युफकून, इसी तरह थे वो फेरे जाते, यानी इनकी अकलों ने काम करना छोड़ दिया, वहां पे जाके इनकी अकलें काम करने, अकल नहीं काम करेगी, दुनिया में तो बात सुनते ही नहीं थे, कानों को भी कान बंद कर लेते, आज कसमें खा खा के कह रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं हमारी तो जिंदगी बहुत थोड़ी थी। قال الذين اوتوا العلم بالايمان, اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان, جو ایمان اور علم دیے گئے وہ لوگ کہیں گے. اب یہ کون کہہ رہے تھے, پہلے کون بات کر رہے تھے, وہ لوگ جو مجرم تھے, اب کون کہیں گے, وہ جو علم دیے گئے, یہ نوٹ کرے اس بات کو, اور جو ایمان رکھنے والے تھے. لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث, تم اللہ کی کتاب کے مطابق تو قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے ہو, یعنی دنیا میں اور قبر میں, جب تک یہ قیامت کا دن نہیں آیا تو تم وہیں رہے ہو. تم کہہ رہے ہو قلیل وقت تھا, قلیل وقت تھا, اصل بات یہ ہے کہ تمہاری عقلیں ہی نہیں کام کری, تم اس وقت تم نے اس وقت کو قیمتی ہی نہیں جانا, بھولے رہے اس زندگی میں. اصل بات یہ ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے, ایسا نہیں کہ کسی نے تمہارا وہ ٹائم شارٹ کر دیا تھا, بلکہ اصل بات یہ ہے تم لوگ چاہے ہزاروں سال انسان برزخ میں رہا ہے, قبر میں پڑا رہا ہے, وہ قیامت کے دن تک وہ تم ٹھہرے رہے ہو. تمہاری زندگی بھی جو دنیا کی ہوش کی زندگی تھی, اور قبر, وہاں تم یوم الباس تک تم وہاں رہے ہو. اللہ کی کتاب میں, یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے. تو یہ کون کہہ رہے ہیں, ریالٹی کا کن کو پتا ہے, کون کہہ رہے ہیں کہ قلیل وقت نہیں گزرا بلکہ تم نے اچھا بھلا ٹائم گزارا ہے, اور لوح محفوظ میں اس طرح سے ہی لکھا ہوا تھا تمہارے لیے, تم نے اتنا ہی گزارا ہے جتنا لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں, جن کے پاس علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقت سمجھا دیتی, اور ایمان وہ چیز ہے. تو ان لوگوں کی آنکھیں دنیا میں ہی کھل گئی تھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں حقیقت جان لی تھی دنیا کی زندگی کی. تو اب وہ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں اس بات پہ, وہذا یوم الباس, یوم الباس یہ ہے قیامت کا دن, اٹھنے کا دن, جس کا تم انکار کرتے تھے اور جس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم تو تھے ہی علم نہ رکھتے, تم تو جاننا ہی نہیں چاہتے تھے, تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے, تم کو علم ہی نہیں تھا, گمراہی نے تمہارے دلوں پہ تالے لگا دیے تھے, نہ تم نے کسی کی بات, نبی کی بات سنی, نہ جو نیک لوگ تمہیں سمجھاتے تھے تم نے ان کی بات سنی. یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا علم کی اہمیت کیا ہے, علم کتنا ضروری ہے. علم کے ذریعے, جب ایمان کے ساتھ علم ہوگا نا, تب علم کے ذریعے آپ, یہ دیکھیں اب آپ کو قرآن کا علم آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے زندگی کی ریالٹی. اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ ایسے سوچ ہی نہیں سکتے تھے, یہاں کا وقت کتنا قیمتی ہے. جو چیز آپ کے پاس کم ہوتی ہے نا, آپ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے, ضائع ہم ہمیشہ اس چیز کو کرتے ہیں جو بہت وافر ہوتی ہے. تو یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کے پاس بہت وافر نہیں ملی ہوئی, یہ بہت کم ملی ہوئی ہے. یہ زندگی ایک خواب سی لگے گی, جیسے ہم خواب میں سوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں, بس ایسے ہی لگے گی. کہیں گے ابھی تو گئے تھے, پتا بھی نہیں چلا, ختم بھی ہو گئی وہ. ہاں ایسے ہی ختم ہو جائے گی. 100 سال جینے والا بھی یہی کہے گا, کبھی خود کو حشر کے میدان میں کھڑا کر کے سوچیں اس زندگی کو جو یہ ہم گزار رہے ہیں, واقعی کیا ایسے نہیں لگے گا. اس کے بعد پچھتاووں کے سوا کیا ہے. ہاں مگر ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا جنہوں نے علم لے لیا تھا ایمان لے, کیونکہ یہ تو اپنی تیاری کر کے رہا ہے, ان کو تو ریالٹی پتا چل گئی تھی نا. اب وہ دیکھیں, اب وہ مجرم ہوں گے, اب وہ روئیں گے, پریشان ہوں گے کہ ہائے اب ہم کیا کریں, اب ہمیں کسی طرح یہاں پہ ہمارا ایکسکیوز سن لیں. لیکن فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کنہوں نے کیا, اپنی جانوں پہ ظلم کیا, لوگوں پہ نہیں, اپنی جانوں پہ ظلم کیا گناہ کر کے. مَعْذِرَتُهُمْ, ان کی معذرت والا, یستعتبون, اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے, نہ ان سے عطاب ضائع لوگا. یعنی اب جتنے مرضی ایکسکیوز دے دیں, اب نہ تو ان کی ایکسکیوز سنا جائے گا, और ना ही कबूल किया जाए और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाए। आज हम कितने खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से, कितना भी कोई अपने आप को कहेगा ना मैं बड़ी बदनसीब हूं, आप में से कोई भी बदनसीब नहीं है जो जिंदा है, बहुत खुश नसीब है। किस तरह से? इस लिहाज से कि आज हमें, हमारे पास अगर पहाड़ भी है ना गुनाहों के, तो आज हम अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं, हम उसको मना सकते हैं, हम उसके आगे रो सकते हैं, हम माफिया मांग सकते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, मगर वो दिन ऐसा होगा क्लोज हो गए डोर्स। अब ना तो कोई दुआएं हैं कि हमें अल्लाह इससे बचा ले, अल्लाह अब हमें माफ कर दे, अल्लाह अब नहीं करेंगे, अल्लाह वो सब दरवाजे बंद हो गए, अब कोई वापसी नहीं है। अब ये सारी जो हम जो यहां पे कर सकती है ना, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, हमें जरा परेशानी होती है, कोई भी हमें चीज बेचैन करती है, कोई तकलीफ होती है, हम फौरन अल्लाह से मांग लेते हैं और हमें एक उम्मीद होती है। इवन काफिर तक देखें, वो भी उनके शिप्स जब हिलने लगते थे मुशरिकों के, तो वो भी अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते थे। यानी हर इंसान के अंदर ना ये एक चीज है, एक उम्मीद की किरण कहीं होती है कि मेरा अल्लाह है ना, वो एक बस कर सकता है ना, वो कर देगा। कितना भी कोई इंसान अल्लाह से दूर हो, वो भी जब सख्त मुसीबत पड़ती है तो वो भी एक लम्हे के लिए अल्लाह से मांग ही लेता है कि वो गॉड प्लीज मेरा ये ऐसे कर दे। लेकिन वाकई वो यौमुल हसरा है, हसरत का दिन, कि इंसान अल्लाह से कुछ मांग ही नहीं सकेगा, कोई तौबा नहीं कबूल हो रही, कोई माजरतें नहीं सुनी जा रही। ये जो एक उम्मीद जो दुनिया में आज इंसान के पास है ना, वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, अब नहीं है, अब ये जगह ही नहीं है। ये दुनिया थी, ये हमारे दिल को कितनी तसल्ली है, हम किसी मुश्किल में पड़ेंगे हाँ अल्लाह तो है ना, मगर उनके लिए जो मुजरिम है उस दिन ये सारी चीज खत्म है, अब अल्लाह नहीं है तुम्हारे लिए। दुनिया में तो हो सकता है ये भी अल्लाह कोई मानते हो पुकारते हो तकलीफ के वक्त में, सख्त मुश्किल के वक्त में, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल के वक्त में तुम्हारा कोई नहीं, कोई माजरते नहीं सुनी जाएंगी, कोई तौबा नहीं कबूल होगी। तौबा का वक्त कब है? आज है। चाहे कितने भी दिल बहाने बनाए और कहे कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बड़ा बेवकूफ है जो कल पे मामला छोड़े, कल नफा नहीं देगी ये तौबा, आज करनी है। आज हम अल्लाह की नाराजगी को दूर करने के काबिल हैं, उस दिन नहीं कर सकेंगे, उस दिन मना नहीं सकेंगे। وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیسے کیسے نہیں ان کو سمجھایا, ہم نے ان لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثال دی, کس کس طرح, واقعی اللہ تو بڑا مہربان ہے, ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے, کیسے کیسے نہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں ثواب کی باتیں ہیں, کہیں عذاب کی باتیں ہیں, کہیں جنت کی ہیں, کہیں جہنم کی ہیں, کہیں اللہ کی عظمت کی ہیں, کہیں اس کی قدرتوں کی ہیں, کہیں اس کے رحم کی ہیں, کہیں اس کے غضب کی ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ انسان تو سمجھتا ہی نہیں کسی طرح بھی, کس کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور مثالیں دے دے کے, توحید کی مثالیں دے دے کے بھی سمجھائے, شرک کے بودے پن کو بھی سمجھایا۔ یعنی کوئی انسان واقعی سمجھنا چاہے نا تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, لیکن اگر نہ کوئی سمجھنا چاہے تو پھر وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ نہ سمجھنا چاہے تو پھر کوئی نشانی دکھا دو ان کو, چاہے سورج ان کو مغرب سے نکال کے بھی دکھا دو گے تو یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہمیں آپ نے دھوکہ دے, ایسے جھوٹ کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے نظر بندی کر دی, یہ تو جادو کر دیا, یہ تو یہ کر دیا, انہوں نے مان کے ہی نہیں دینا, ورنہ یہ قرآن کی مثالیں کافی ہیں جس نے مان جانا ہو, لیکن جس نے نہیں ماننا پھر آپ بڑی سے بڑا معجزہ دکھا دو, نشانیاں دکھا دو۔ کیا بنی اسرائیل کے سامنے نہیں آئی تھی, وہ فرعون کے سامنے نہیں آئی تھی, کتنی نشانیاں دکھائی تھی, نہیں پھر اس کے بعد پھر ویسے ڈھیٹ, پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بس نظر بندی کر دی ہے, یہ تو بھائی نہیں ہے, आप देख लें आज भी आप कई लोगों को कुरान की आयतें इवन दिखा दे, ये देखो कुरान में ये लिखा हुआ, कहते नहीं ये तो जी आपने खुद ही इस तरह इंटरप्रिटेशन कर लिया, हम नहीं ये मानते, हम नहीं ये करते। जब माइंड ही मेकअप कर लिया हो किसी ने कि नहीं जी मैंने नहीं मानना, तो फिर कैसे आप उसको मनवा सकते। कذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون, इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह फिर दिलों पे, जब नहीं कहते ना नहीं हमने नहीं मानना, आप लोग ही ऐसे आप ही गलत कह रहे हैं, दिल फिर सख्त हो जाते हैं, अल्लाह ताला फिर इन पे मोहर लगा देता है। الذين لا يعلمون, इसको नोट करें, उन लोगों के दिलों पर जो इल्म नहीं रखते। जब इल्म नहीं होता ना तो फिर जो बगैर इल्म के बस इनकार किए जाना, अब पता भी नहीं है, नहीं जी कहां कुरान में लिखा है, नहीं जी ये कहां, ओ तो तुमने कौन सा कुरान पढ़ के देखा, पढ़ा है नहीं कभी, हदीस का कभी नहीं पता कि हदीस क्या कहती है, हदीस कैसे कंपाइल हुई है, और नहीं जी ये तो बस ये तो बाद में लिखी गई है, तो और तुमने कितना का तुम्हारे पास नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, ज्यादा बहुत ही हो गया तो इंटरनेट पर सर्च करने बैठ गए, ये भी कोई इल्म लेने के सोर्सेज हैं। और उसके बाद इनकार पे इनकार किए जाना, जब इंसान इनकार पे इनकार करता जाता है ना ढीट होके, तो अल्लाह ताला उसके दिल पे फिर मुहर लगा देता है, फिर दिल नहीं खुलता। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और वजह क्या थी, ला इल्मी, इल्म है नहीं, बस उस प्रोफेसर की बात सुन ली, हमारे तो टीचर ने फलाने ने यूनिवर्सिटी में ये बता दिया था, उन्होंने उनको पट्टी पढ़ा दी इस चीज की कि कोई खुदा ही नहीं है, तो बस उनके पीछे चल पड़े। इंटरनेट पे सर्च कर लिया, तो अब साइंस क्या प्रूव करती है कि कोई खुदा है या नहीं, अब नहीं नहीं साइंस तो नहीं प्रूव करती, तो ठीक है फिर हमने तो खुदा को मानना ही नहीं। फिर चार बातें इधर से सुन ली, चार उधर से सुन ली, ये है इनका इल्म, फिर मुहर लग जाती है। जो सामने चीज देख के भी इग्नोर करें, तुम्हें ये अल्लाह की कुदरतें जालिमों नजर नहीं आती, कितनी निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई, नहीं अच्छा कुरान नहीं पढ़ते, तुम्हारी आंखें तो हैं देख लो इनसे, वो नहीं नजर आती, मगर एक किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि कोई खुदा नहीं है, तो उसकी बात पे यकीन कर लेना, कितने जालिम लोग हैं ये। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जब नबी लोगों को बताते थे वो नई बात को सुनते थे, तो उनके दिल को बहुत रंज होता था, अल्लाह ताला ने उनको सबर का सबक दिया। लेकिन याद रखिए यहाँ पे खिताब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और वाहिद का सीगा है, लेकिन उम्मत को असल में बताया जा रहा है, तो उम्मत इन चीजों से गुजरेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सबर ना करते आपकी जिंदगी, तो सारी सबर वाली जिंदगी है। ताइफ के मौके पे ना सबर करते, मुशरिकीन मक्का के साथ ना सबर करते, तो कैसे ये इस्लाम फैलता। अल्लाह ताला ने फरमाया फसबिर, सबर करें, जब सामने बैठ के कोई लोग इनकार करते जाए, कहेंगे नहीं ये सूरज नहीं है, सूरज निकला हुआ और कहें सूरज नहीं है, तो आप फिर इंसान कितना यानी बेचैन होता है, कितना फ्रस्ट्रेट होता है कि ये क्यों नहीं समझ रहे, इनको बात क्यों नहीं। और बाज दफा ये मामला इंसान का अपने घर वालों के साथ भी हो जाता है, अपने खानदानों में भी हो जाता है, आप समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहे, आप फिर इतने ज्यादा आपको बेचैनी होने लगती है कि किस तरफ जा रहे, उस वक्त क्या जरूरी है, सबर करो। सबर क्या चीज होती है, नेगेटिव रिएक्शन ना शो करो, आप उस वक्त आपे से बाहर ना हो जाए, उस वक्त चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दे, उस वक्त ये ना कहे मैंने नहीं कभी आइंदा बताना, उस वक्त दिल बर्दाश्त होके ये बताना ना छोड़ दे, हौसला रखे, जमे रहे सबर के साथ। इन्ना वादल्लाही हक, अल्लाह का वादा सच्चा है, कौन सा अल्लाह का वादा, जितने ये वादे हुए ना सब सच्चे हैं। इंसान क्यामत के दिन ये सोचेगा कि मेरी जिंदगी इतनी एक साथ से ज्यादा नहीं थी, ये भी अल्लाह का वादा है कि ऐसा ही होगा, वो भी होके रहेगा। अल्लाह का ये वादा है ना कि उस दिन लोग अलग अलग फिरके फिरके हो जाएंगे, मुतफर्रिक हो जाएंगे, वो भी अल्लाह का वादा सच्चा है, ऐसा ही होगा। अल्लाह का वादा है ना कि एक दिन इंसान कहेगा मैं क्या लेकर आया, मेरे पास कुछ नहीं, उसको याद आएगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा, ये अल्लाह का वादा ये होके रहेगा। अल्लाह ने वादा किया आसमान फटेगा, अल्लाह ने वादा किया कि सितारे झड़ेंगे, अल्लाह ने वादा किया कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे, अल्लाह ने वादा किया कि जहन्नुम लाई जाएगी, अल्लाह ने वादा किया जन्नत सजाई जाएगी। ये सब अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह ने वादा किया ईमान वालों और साले अमल वालों के लिए क्या है, अल्लाह के वादे हैं कि मुजरिमों के लिए क्या है, सब अल्लाह के वादे हैं और सब हक हैं, सब सच हैं। ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के सारे ही वादे पूरे हो के रहने वाले। तो तुम सबर करो, सबर नहीं किया तो पैगाम नहीं पहुंच सकेगा। सिर्फ जज्बाती होने से आज एकदम खड़े होके एक तकरीर कर देने से उसके बाद ये तो मानते ही नहीं, अब तो मैंने इनको बताना ही नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो कोई फायदा नहीं, नहीं फिर भी खैर ख्वाही नहीं छोड़नी, फिर भी बताते रहो, सबर से चलते रहो। अल्लाह के वादे सब सच्चे हैं। अल्लाह अपने नबी को बुलंदी अता फरमाएगा, ये भी अल्लाह का वादा है, और फिर हुआ ऐसा ही। और एक दिन ये दीन भी सारे अधियान के ऊपर गालिब आके रहेगा जब ईसा अलैहि सलाम आ जाएंगे, और ये अल्लाह का वादा है, ये सच्चा है। वला यस्तखफन्नक अल्लदीन ला यूकिनून, और ना हरगिज ना हल्का पाए आपको वो लोग जो यकीन नहीं रखते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी हल्के पड़ने वाले नहीं थे उनके सामने, लेकिन जो उम्मत है उसको मैसेज दिया गया कि दीन में इतने नरम ना हो जाना कि दूसरे नरम चारा समझ के तो हजम ही कर ले, चबा ही जाए तुम्हें। यानी जब दूसरों का प्रेशर आए तो वो आपको ढीला ना पाए कि ये क्या है ना इनके, ये तो इनकी कोई यानी स्टैंडिंग ही नहीं है, इनको तो आज हमने थोड़ा सा प्रेशराइज किया या थोड़ा सा अपनी बातों में लेकर आए, तो ये तो यानी फर्म नहीं है, ये बस ढीले से ही है, ये छोड़ छाड़ आएंगे अपना दीन, यानी जरा इनको दबाव डालो देखो ये छोड़ देंगे सारा कुछ, ऐसा ना वो समझे। इतने तुम्हें फर्म होना चाहिए उनके प्रेशर्स के आगे भी। आज तो जैसे वक्त है ना कि आप क्या करें, हाय क्या करें, ये तो बड़ा चल नहीं सकते इस दीन के ऊपर, ये नहीं, हदीस में तो ये है कि तुम्हारे बाद वाला जमाना सबर आजमा होगा, उस वक्त दीन को थामने वाले को तुम्हारे 50 आदमियों के बराबर अजर मिलेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फरमा रहे हैं कि तुम्हारे 50 के बराबर उनको सब अजर मिलेगा। ऐसा भी वक्त आ जाएगा दीन के ऊपर, इतना सबर आजमा वक्त होगा, तो वो तुम्हें हल्का ना पाए, वो तुम्हें ऐसा ना पाए कि यानी आपको इतना वो कर दें कि आप अपने दीन को ही छोड़ के भाग जाओ, ऐसा ना वो पाए आपको। अल्लाह अकबर। इसलिए दीन के ऊपर पक्के रहो, जम के रहो, फर्म रहो, ढीले ना पड़ो, ये ताकीद की गई है। देखिए आप शुरू इस सूरत का कैसा कशमकश है कुफर की और ईमान की, उस वक्त के जमाने के जो वो थे, यानी एक तरफ बिल्कुल आग परस्त और एक तरफ अल्लाह को मानने वाले, उनकी थी। और एंड में जो एक दाईये दीन है उसको कैसे चलना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ऐसे कश्मकश के वक्त में। अल्लाह ताला इस सूरत को हमारे दिलों में उतार दे, अल्लाह इससे हमें सीखने वाला बना दे, इसमें जो निशानियां बताई हैं उन पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे। अल्लाह ताला इस सूरत को हमारे हक में हुज्जत बनाना, इसकी सही समझ अता फरमाना हमें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.